नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ऑनलाइन यात्रा सेवा कंपनी मेक माई ट्रिप ने होटल या उड़ान टिकट बुक करते समय अपने बुक नाउ पे लेटर विकल्प के लिए HDFC बैंक, IDFC बैंक, कैपिटल फ्लोट और जस्ट मनी सहित 15 बैंकों, NBFC और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ भागीदारी की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। अडानी समूह सीमेंट के बाद अब स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह ने बड़े अस्पतालों, डायग्नोस्टिक श्रृंखला और ऑनलाइन और डिजिटल फार्मेसी के अधिग्रहण के जरिए इस क्षेत्र में उतरने की तैयारी की है। समूह ने इसके लिए एक नई कंपनी का गठन भी किया है। समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उस उद्देश्य से 17 मई 2022 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अडानी हेल्थ वेंचर्स लिमिटेड का गठन किया गया है। AHVL स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों का परिचालन करेगी। ये कंपनी चिकित्सा और जांच सुविधाओं की स्थापना और संचालन के अलावा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं, शोध केंद्रों आदि का गठन करेगी। समूह ने कहा कि AHVL का कारोबारी परिचालन समय के साथ शुरू होगा। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बृहस्पतिवार को कहा कि संपत्ति का सृजन निजी क्षेत्र का काम है और सरकार को सार्वजनिक नीति ढांचे को खड़ा करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने गॉवटेक समिट 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को बहुत ही सरल, कुशल और पारदर्शी सरकार की जरूरत है। कांत ने कहा, सरकार का काम सार्वजनिक नीति के ढांचे को तैयार करना होना चाहिए। संपत्ति बनाना निजी क्षेत्र का काम है। सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि भारत परिवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहाने पर खड़ा है और डिजिटलीकरण की पूरी प्रक्रिया बदलाव की यात्रा रही है। नीति आयोग के CEO ने कहा, अगर भारत के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह डिजिटल कर दिया जाता है और कामकाज का संचालन काफी आसान हो जाता है तो देश का पूर्वी हिस्सा वास्तव में एक बहुत ही संवेदनशील सरकार वाला क्षेत्र बन जाएगा। नीति आयोग के CEO ने डेटा आधारित कामकाज के संचालन पर जोर देते हुए कहा कि इससे संचालन बेहतर होगा। महंगाई का दोहरा झटका लोगों को एक बार फिर लगा। गुरुवार को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। ये बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। रसोई गैस की कीमत में 3.50 रुपए बढ़ने से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार पहुंच गए हैं। वहीं कमर्शियल गैस की कीमत में भी 8 रुपए बढ़ोतरी हुई है। इससे दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2355.50 रुपए हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद से देश के सभी शहरों में घरेलू गैस की कीमत 1000 रुपए से अधिक हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 103 रुपए है, जबकि कोलकाता में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1029 रुपए हो चुकी है और चेन्नई में इसकी कीमत आज से 1018.50 रुपए हो गई है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि 31 मार्च को खत्म तिमाही में उसका कर के बाद समेकित लाभ 76% की गिरावट के साथ 87.5 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने बताया कि साल भर पहले समान तिमाही में उसका कर के बाद लाभ 362.4 करोड़ रुपए था। वहीं समीक्षाधीन अवधि में उसका राजस्व 15% बढ़कर 5436.8 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 4728.4 करोड़ रुपए था। डॉक्टर रेड्डीज के सह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक GV प्रसाद ने कहा कि हम अपने मूल कारोबार को बढ़ाना जारी रखेंगे। बीते पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का कर के बाद लाभ 2356.8 करोड़ रुपए और राजस्व 21,439 करोड़ रुपए रहा। ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विवेक कुमार देवगन को सार्वजनिक क्षेत्र की REC लिमिटेड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। इससे लगभग एक हफ्ते पहले REC लिमिटेड ने बताया था कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ढिल्लन को 3 महीने के लिए REC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। REC ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि 1969 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विवेक कुमार देवगन ने 17 मई 2022 को REC लिमिटेड में CMD पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति से पहले देवगन ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शाहपुरजी पालूनजी समूह की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के निर्णय को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। हालांकि प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया था। टाटा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने कहा कि अदालत एक या कुछ और वाक्यों को हटाने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इसका कारण शाहपुरजी पालूनजी समूह के आवेदन में बताई गई वजह नहीं होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने 26 मार्च 2021 को मिस्त्री को 100 अरब डॉलर के समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।